15 अगस्त गुरुवार, दिन भर में स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की होगी नियुक्ति।
आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूँ कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे।
जानेंगे अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू में कैसे मना स्वतंत्रता दिवस।
तो बेसिकली हमें जो आजादी की बात की जाए तो हमें आजादी जो थी वो 5 अगस्त 2019 को मिली है। जब से ये भारत देश आजाद हुआ है हम तो जहाँ गुलामों की तरह ही रहते थे जम्मू कश्मीर में हम।
साथ ही जानेंगे अभियुक्तों के बरी होने के बाद कैसा है पहलू खान के घर का हाल। होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
BBC समाचार संदीप राय से। भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं में तालमेल स्थापित करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए जाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता खत्म करने को अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा कश्मीरियों को अपने सपने और आकांक्षाएं पूरा करने में बाधक था। जब से केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जे को खत्म किया है तब से भारत प्रशासित कश्मीर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। ब्रिटेन में चीन के राजदूत लियू शाओमिंग ने कहा है कि अगर हांगकांग में हालात और बिगड़ते हैं तो बीजिंग हस्तक्षेप करेगा। चीनी राजदूत ने कहा कि 2 दशक पहले जब ब्रिटेन ने इस इलाके को बीजिंग को सौंपा था उसके बाद अभी हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। हांगकांग एयरपोर्ट पर लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं के हिंसक प्रदर्शन के बाद चीन का ये बयान आया है। लियू ने कहा कि यह ब्रिटेन के औपनिवेशिक अतीत की याद ताज़ा करती है और ब्रिटेन के राजनेताओं को सच्चाई स्वीकार करने की ज़रूरत है। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से इस संकट को मानवीय तरीके से हल करने को कहा है। मैं समझता हूं कि इस देश में कुछ राजनेता अभी भी सोचते हैं कि वो 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में औपनिवेशिक दिनों की याद है। मेरी समझ से इनमें से कुछ अभी भी हांगकांग को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा मानते हैं। वे हांगकांग को ब्रिटेन के हिस्सा के तौर पर मानते हैं। उन्हें अपनी मानसिकता बदलनी होगी, समझ को ठीक करना होगा और हांगकांग को चीन का हिस्सा मानना होगा, न कि ब्रिटेन का। ये थे चीन के राजदूत लियू शाओमिंग के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। एक रूसी एयरलाइंस में सवार करीब 234 लोग उस समय बाल बाल बच गए जब उड़ान भरने के तुरंत बाद ही विमान को खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये जगह एयरपोर्ट के पास ही थी। एयरबस 321 मॉस्को से क्रीमिया जा रहा था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही उसके इंजन में चिड़ियों का एक झुंड फंस गया। सहमे हुए यात्रियों ने बताया कि जब विमान जमीन से टकराया तो बहुत तेज झटका लगा था।
Там у нас, в принципе, гробовая тишина была. Все, все просто ждали своей участи. Резкий удар.
विमान में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। हर कोई इंतजार कर रहा था कि अब क्या होता है। तभी विमान एक झटके के साथ जमीन पर आया। मैंने अपने बच्चे को हाथ में पकड़ रखा था। मुझे डर था कि कहीं वो हाथ से गिर न जाए। ये थे एक यात्री के शब्द। अंतिम पलों में अमेरिका की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद जब्त किए गए ईरानी तेल टैंकर की रिहाई अधर में लटक गई है। पिछले महीने जिब्राल्टर के पास इस टैंकर को जब्त किया गया था। जिब्राल्टर की सुप्रीम कोर्ट इस बारे में फैसला देने ही जा रही थी। स्थानीय मीडिया में मुख्य न्यायाधीश के हवाले से कहा गया है कि अगर अमरीकी अपील नहीं आई होती तो ईरानी पोत को रिहा कर दिया जाता। बीते अक्टूबर के बाद से अमरीकी शेयर बाजारों में एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट के बाद एशियाई बाजार भी औंधे मुंह गिर गए। जापान का शेयर बाजार 6 महीने के निचले स्तर पर जाकर बंद हुआ। बुधवार को अमरीका में डाउ जोन्स में 3% की गिरावट दर्ज की गई। इसी तरह ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बाजार में भी भारी गिरावट देखी गई। अमरीका और ब्रिटेन के मुख्य वित्तीय संकेतकों से बाजार में यह डर पैदा हो गया है कि अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में जा रही हैं। BBC समाचार।
नमस्कार, स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। आज भारत अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। दूसरी बार सरकार बनने के बाद पहली बार आज स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.5 घंटा लंबा भाषण दिया। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ रक्षाबंधन की बधाई देते हुए देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ पर भी दुख जताया। साथ ही उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की घोषणा की। सुनिए पूरी रिपोर्ट बीबीसी संवाददाता सुशीला सिंह से।
ऐतिहासिक लाल किले पर आगमन हो चुका है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का।
आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया,
अंतसेना पुलिस समान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान।
जिसके बाद उन्होंने झंडा फहराया और फिर राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि दूसरी बार उनकी सरकार बनने के 10 हफ्ते के अंदर कई काम पूरे किए गए हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद 370, 3 तलाक, किसानों को आर्थिक सहायता देने, जनशक्ति मंत्रालय बनाने जैसे कामों को अपनी सरकार की उपलब्धि बताया।
मेरे प्यारे देशवासियों, 10 हफ्ते के भीतर भीतर ही अनुच्छेद 370 का हटना, 35A का हटना, हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को उनका अधिकार दिलाने के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना, हमारे किसान भाइयों बहनों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 90,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में ट्रांसफर करने का एक महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विस्तार से 3 तलाक और अनुच्छेद 370 पर भी बोले। उन्होंने कहा कि ना ही अब समस्याओं को टालने का समय है और ना पालने का समय है। उन्होंने कहा कि जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वह काम सरकार बनने के 70 दिनों में हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान विपक्षियों को निशाने पर लिया। उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध करने वालों से कहा कि अगर ये जरूरी था तो इसको स्थायी क्यों नहीं किया गया।
जो लोग 370 के पक्ष में वकालत करते हैं उनको देश पूछ रहा है, अगर ये अनुच्छेद 370, ये 35A इतना महत्वपूर्ण था, इतना अनिवार्य था, उसी से भाग्य बदलने वाला था तो 70 साल तक इतना भारी बहुमत होने के बावजूद भी आप लोगों ने उसको परमानेंट क्यों नहीं किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी के महत्व पर बल देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने इसकी जरूरत को समझा है और इसी कारण घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जनसंख्या विस्फोट, एक राष्ट्र एक चुनाव और आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने इस दौरान सबसे अहम घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS की व्यवस्था करेगी जिसमें तीनों सेनाओं का एक प्रमुख होगा। उन्होंने कहा,
आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूं। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण की समाप्ति में अपनी सरकार की योजनाओं को दोहराते हुए कहा कि उनका उद्देश्य 130 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि ये साल महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल महात्मा गांधी के जन्म को 150 वर्ष और संविधान के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सुशीला सिंह, BBC दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण का किस तरह विश्लेषण किया जाना चाहिए और इसे 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए? बीबीसी हिंदी रेडियो के संपादक राजेश जोशी ने पहला सवाल यही पूछा बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की राजनीतिक संपादक अदिति फडणीस से।
हमारे ख्याल से 5 देना उचित होगा। 5 इसलिए कि लोगों को बहुत उम्मीद थी कि वो कोई इस तरह के बड़े अनाउंसमेंट्स करेंगे, खासतौर से देश बहुत कठिनाई के दौर से गुजर रहा है इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को लेके, और जम्मू और कश्मीर में जिस तरह के उथल पुथल हो रही है वो तो सबको सर्वविदित है। तो उस सिलसिले में यदि वो कुछ कहते तो शायद मैं उनको ज़्यादा नंबर देती,
वैसे ये बात भी सच है कि जो भी प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोलता है वो अपनी उपलब्धियों का ही बखान करता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें कोई अपवाद नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हमारी राजनीतिक स्थिरता को गर्व के साथ देखा जा रहा है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है।
सच बात तो ये है कि अपने देश को किसको गर्व नहीं होता है, हम सब भारतीय हैं और हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि हमारा देश एक है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र की नींव से ज़रा भी नहीं खिसका है। लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जो देश काल वातावरण के अनुसार बोली जाती हैं और मोदी जी का भाषण उस मायने में मेरे ख्याल से थोड़ा कम पड़ा।
जब कश्मीर के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, ये कहा जा रहा है कि कश्मीर लॉकडाउन है, वहाँ के लोग आ जा नहीं सक रहे हैं, इंटरनेट बंद है, वैसे में भी नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों को खुली चुनौती दी कि 70 साल में आपके पास मेजोरिटी थी, आपने नहीं किया क्योंकि आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी।
लेकिन सवाल ये है कि ये समय किस बात को कहने के लिए उचित है, आपको इस समय क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि जो लोग कश्मीर में एक तरह से ये मानते हैं कि दो पार्टों में पिस रहे हैं, एक तरफ से जो आतंकवादी आके उन पे अटैक करते हैं, दूसरी तरफ से भारतीय सेना और भारतीय तंत्र के फोर्सेस, मेरे ख्याल से इस समय उनके आंसू पोंछने की जरूरत थी, बजाय इसके कि आप चौड़े होके कहें कि हमने करके दिखाया और किसी ने कुछ नहीं किया।
उन्होंने एक बात कही प्रधानमंत्री मोदी ने कि आतंकवाद का माहौल पैदा करने वालों को नेस्तनाबूद करने की हमारी नीति स्पष्ट है, आतंकवाद फैलाने वालों के लिए बल्कि माहौल जो उसका पैदा करते हैं, यूएपीए में संशोधन भी हुआ है, तो इससे क्या संदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री?
मेरे ख्याल से संदेश तो साफ है कि न सिर्फ जो देश में लोग हैं लेकिन जो देश के बाहर लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेके उल्लेख नहीं किया लेकिन जो इशारा था वो समझदार के लिए काफ़ी है।
एक जो बहुत ही विवादास्पद मुद्दा बहुत शुरुआत से हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि सेना के तीनों अंगों का एक प्रमुख न हो, ये नेहरू ने डिवाइस भी किया था ताकि जो एक तरह से खतरा होता है डिक्टेटरशिप का या फौजी टेकओवर का, उसको बचाने के लिए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की व्यवस्था करेंगे, तो ये उस बहस से अलग बहस है या इससे कुछ फायदा होगा, इससे जो सुरक्षा है देश की वो स्ट्रीमलाइन होगी?
देखिए, जो पंडित नेहरू ने कहा था वो विशेष परिस्थितियों में कहा था, हमारे देश के इर्द गिर्द आसपास एक के बाद एक मिलिट्री कू हो रहा था, पाकिस्तान में तो हो ही चुका था, उसके बाद बांग्लादेश में भी हुआ, पर एक विशेष परिस्थिति में उन्होंने ये कहा था। हमारे देश में परिस्थितियां बहुत भिन्न हैं, बहुत फ़र्क हैं, सिविलियन कंट्रोल है सेना पर और सख्त ज़रूरत है एक ऐसे फोर्स की जो कि प्रधानमंत्री के लिए एक सिंगल पॉइंट एडवाइस देने वाला हो, जो कि तीनों फोर्सेस, सैन्य बल, नौसेना और वायुसेना, तीनों फोर्सेस की बात को उनके सामने एक जगह रख सके। ये CDS में पूरा आगे आने वाले समय में स्वरूप क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से CDS की जो डिमांड है वो कई सालों से, खासतौर से कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद, नई नई चुनौतियों से डील करने के लिए एक सेना ने ये सामने रखी थी।
ये थी बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की राजनीतिक संपादक अदिति फडणीस, जिनसे बात कर रहे थे BBC हिंदी रेडियो के संपादक राजेश जोशी। अब रुख करते हैं भारत प्रशासित कश्मीर का, जहां अभी भी कर्फ्यू लागू है, साथ ही संचार के सभी साधन ठप पड़े हुए हैं। वहां से बड़ी मुश्किलों के बाद BBC संवाददाता रियाज मसरूर हमसे संपर्क कर पाए। हमारे सहयोगी शकील अख्तर ने उनसे आज दोपहर में बात की और जाना कि स्वतंत्रता दिवस पर वहां कैसा माहौल रहा।
शकील, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि बहुत सख्त इंतजाम है सिक्योरिटी के, लेकिन लोगों को आने जाने की सहूलत भी दी जा रही है बीच में, लेकिन जाहिर है आज ये दफा 370 हटाने के बाद जैसी सूरत हाल पैदा हुई थी उसमें ये तकरीब एक बहुत बड़ा चैलेंज था एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। कोई इतला चूंकि बाकी जिलों से नहीं आ रही है कम्युनिकेशन ब्लॉकेट की वजह से, लेकिन जहां पे ये परेड हुई उसके गिर्दो नवा में और श्रीनगर में मजमुई तौर पर हालात पुरसकून रहे, लेकिन जैसा कि यहां रवायत रही है कि बीजेपी या बीजेपी की आइडियोलॉजी से जुड़े दूसरे ग्रुप हर साल 15 अगस्त को या 26 जनवरी को यहां लाल चौक में अलामती तौर पर तिरंगा लहराने की कोशिश करते हैं, इसकी इजाजत आज नहीं दी गई। मैं वहीं पर मौजूद था, लाल चौक में भी 2-3 लोग आए और जहां पे ये परेड हो रही थी आज ऑफिशियल परेड, जहां गवर्नर को सलामी लेनी थी SK स्टेडियम के बाहर, वहां भी हरियाणा से BJP कार्यकर्ताओं का एक डेलीगेशन आया था, उन्होंने तिरंगा यात्रा चलाने की कोशिश की लेकिन उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
तो इसका मतलब ये है कि ये सरकारी तौर पर ये कदम उठाया गया कि वहां पर झंडा लहराने का जो रवायती तौर पर चला आ रहा था उसकी इजाजत सरकारी तौर पर नहीं दी गई है।
जी बिल्कुल, ये कल ही रोहित कंसल और एडीजी जाहिर जिलानी ने ऐलान किया था कि अगर किसी को कोई भी तकरीब करनी है, कहीं कोई प्रोटेस्ट करना है, तो उसकी बाकायदा इजाजत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ली जाएगी। ऐसे ही कोई आके किसी सड़क पर खड़ा हो, क्योंकि दफा 144 का मतलब है कि चार लोगों से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं, तो उसको सख्ती से नाफिज किया गया। न तो घंटाघर के पास किसी को झंडा लहराने की इजाजत दी गई और ना ही किसी और शाहरा पे, क्योंकि बताया ये गया कि हर जिला हेडक्वार्टर पे हर कस्बे में तिरंगा ऑफिशियली लहराया जा रहा है और सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर में हो रही है, इसलिए सड़कों पे झंडा लहराने की तकरीब के लिए पेश की इजाजत को जो है लाजमी बनाया गया था एक दिन पहले ही।
अब इस वक्त क्या सिचुएशन है वहाँ पर मोबिलिटी की, क्या लोग निकल पा रहे हैं, कुछ नरमी का एहसास हो रहा है?
जी, महदूद पैमाने पे सहूलत दी जा रही है, जैसे कुछ गैर हसास इलाकों में लोग तो निकल रहे हैं, लेकिन चूंकि कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, स्कूल बंद हैं, सिर्फ मोहल्लों के अंदरूनी इलाकों में खाने पीने की अशिया जो है वो मिल रही हैं, लेकिन ये है कि मजमूई तौर पे हालात लोग सख्ती से गुजर रहे हैं, लेकिन अफवाहें काफी उड़ रही हैं कि आज शाम से कर्फ्यू उठाया जाएगा, कल से ज्यादा नरमी दी जाएगी, लेकिन ऑफिशियली इसमें बताया जा रहा है कि सिचुएशन को रीड किया जा रहा है, जब भी इसमें बेहतरी आएगी तो उसकी हिसाब से बतदरी जो है कर्फ्यू में नरमी की जाएगी। और कम्युनिकेशन ब्लॉकेट से तो ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक दूसरे से लोग रابطہ नहीं कर पा रहे।
कम्युनिकेशन ब्लॉकेट तो अभी चल ही रहा है, तो क्या दूसरी जगहों से भी कुछ खबरें आ रही हैं कहीं से?
जी देखिए, अगर आज की डेट में कोई साउथ चला जाए या बारामूला, वो या तो देर रात में लौटेगा या दूसरे दिन लौटेगा, और वहां भी उन कस्बों में भी चूंकि आमदरफ्त नहीं है, नकलो हमल नहीं है, नकलो हरकत नहीं है, तो इसलिए खास खबरें नहीं आ रही। हमारे लिए इस वक्त मालूमात का जो वाहिद जरिया है वो हुकूमत है, और हुकूमत हर रोज शाम को ये बयान देती है कि कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। जब से ये हालात पैदा हुए हैं, तब से पहली बार कल शाम को हुकूमत ने ये एतराफ किया कि कुछ जो है वारदातें हुई हैं, बहुत मामूली नवियत की, ऐसा उनका दावा था, जिसमें दो लोगों को पैलेट इंजरीज हुई हैं और जिन्हें हॉस्पिटल से रुखसत भी किया गया है, लेकिन आजादाना तौर पे ये मालूम कर पाना कि कहां क्या हुआ है ये अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया है।
भारत प्रशासित कश्मीर में कर्फ्यू बरकरार, अधिक जानकारी दे रहे थे रियाज मसरूर। कश्मीर घाटी के बाद रुख करते हैं जम्मू का, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। सुनिए जम्मू से हमारे सहयोगी मोहित कंधारी की रिपोर्ट।
वीरवार को जम्मू शहर के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने बड़ी संख्या में जमा होकर जगह जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मिठाइयां बांटी। शहर के पार्क और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुबह के समय खूब रौनक नजर आई। जम्मू में पिछले 30 साल से रह रही क्षमा कौर ने बीबीसी हिंदी को बताया, जम्मू में शुरू से ही आज का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन आज खुशी दुगनी हो गई है।
ये आर्टिकल 370 मोदी जी ने उठाया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे एक तो मान मिला, अभिमान मिला, सारा हिंदुस्तान मिला, हम बहुत खुश हैं।
बड़ी संख्या में शहर के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों का कहना था, आज हम पूर्ण रूप से भारतवर्ष के साथ जुड़ चुके हैं, इसलिए दिल से खुशियां मना रहे हैं। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी समिति के अध्यक्ष लाभाराम गांधी ने बीबीसी हिंदी को बताया,
तो बेसिकली हमें जो आजादी की बात की जाए, तो हमें आजादी जो थी वो 5 अगस्त 2019 को मिली है। जब से ये भारत देश आजाद हुआ है, हम तो जहाँ गुलामों की तरह ही रहते थे जम्मू कश्मीर में, हमें जहाँ आजादी तो आज भी मिली अगर देखा जाए तो इसी अगस्त महीने में।
जम्मू में गुज्जर नगर इलाके के रहने वाले रिटायर्ड टीचर अक्रम अली खान ने बीबीसी को बताया, जब से गुज्जर नगर यहाँ बसा है, हम तिरंगा झंडा लहराते आ रहे हैं।
हम हर साल 20 साल से हलवा बांट रहे हैं और अपने भाइयों को, उन भाइयों का मुंह मीठा करवा रहे हैं, और खुद भी वो भी हमारा मुंह मीठा करवाते हैं, और हम बहुत खुश हैं।
सुरक्षा कारणों से सुबह से ही जम्मू शहर को जाने वाले सभी रास्तों पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती थी। अति संवेदनशील इलाकों में क्विक रिएक्शन टीम की भी तैनाती की गई थी। इस बीच शहर के सारे बाजार बंद रहे और सार्वजनिक यातायात भी बाधित रहा। सड़कों पर सुरक्षा बलों के अलावा पत्रकार, सरकारी अफसर और चौराहों पर तिरंगा लहराते छोटे छोटे गुटों में स्थानीय निवासी ही नजर आए। मुख्य कार्यक्रम जम्मू शहर की परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया था। यहाँ पर एडवाइजर फारूक खान ने तिरंगा लहराया और परेड की सलामी ली। जम्मू संभाग के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने बीबीसी हिंदी को बताया, सभी जिला मुख्यालयों में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से निपट गया।
देखिए, जो हमारा देश का योम आजादी है, स्वतंत्र दिवस है, आज पूरी जम्मू प्रोविंस में, पूरी स्टेट में, खासकर जम्मू प्रोविंस में भी बड़ी खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
प्रदेश अध्यक्ष भाजपा रविंदर रैना ने पार्टी मुख्यालय में तिरंगा लहराया और अपने संदेश में कहा, आज का दिन हम सबके लिए जश्न का दिन है, गर्व करने का दिन है। आज जम्मू कश्मीर पूरी तरह से धारा 370 35A की गुलामी से मुक्त हुआ है।
आज का दिन हम सबके लिए बड़े जश्न का दिन है, गर्व का दिन है। आज का ये स्वतंत्रता दिवस देखने के लिए हमारे कितने क्रांतिकारी वीरों ने कुर्बानियां दी।
जम्मू में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने आम जनता के बीच जाकर अपने अपने पार्टी कार्यालयों में तिरंगा झंडा लहराया। पीडीपी कार्यालय में स्थानीय नेताओं ने तिरंगा लहराने के बाद राष्ट्रगान में हिस्सा लिया। वहीं शेरे कश्मीर भवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने भी तिरंगा लहराया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जगह जगह पोस्टर बैनर लगाकर जम्मू वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और अपने अपने इलाकों में जनता के साथ मिलकर तिरंगा लहराया। मोहित कंधारी, बीबीसी जम्मू।
घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है।
The Eid namaz were offered at different mosques. After the prayer, the congregation dispersed peacefully.
अंदर से लोगों के अंदर मतलब भरा हुआ है, जो ही लोगों को मौका मिलेगा ये उबल पड़ेगा।
फोन कॉल्स बंद है, इंटरनेट बंद है।
इंटरनेट बंद हो या कर्फ्यू लगा हो,
बीबीसी हिंदी रेडियो हमेशा आपके साथ है।
इस शुक्रवार 16 अगस्त से दिन भर कार्यक्रम का प्रसारण पूरे एक घंटे तक होगा।
भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 से 8:30 बजे तक हफ्ते के सातों दिन
25 और 31 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795 और 11995 किलोहर्ट्ज़ पर
बीबीसी हिंदी रेडियो।
जी हाँ, अब से दिन भर पूरे एक घंटे का इस कार्यक्रम को आप कल से सुन पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के अलवर में कथित गोरक्षकों के हाथों मारे गए पहलू खान के मामले में राज्य की एक निचली अदालत ने कल 6 अभियुक्तों को बरी कर दिया था। हरियाणा के नूह में रहने वाले पहलू खान साल 2017 में जयपुर से गाय लेकर अपने घर जा रहे थे। आज बीबीसी संवाददाता विनीत खरे नूह में पहलू खान के घर पहुंचे और वहां के हालात का जायजा लिया।
देखिए शायद ये कल फैसला आया है और हमारी परिवार से बात हुई, हम पहुंचे तो बिल्कुल जैसे लगता था घर में सन्नाटा बसरा हुआ है। उनके जो बेटे हैं इरशाद और उनकी पत्नी पहलू खान की जैबुना बेगम, उनसे मुलाकात हो गई। बच्चे अपना अंदर काम कर रहे थे, बिल्कुल खाली सा पड़ा हुआ था और सबका जो मुंह है लटका हुआ है। मुझे उनकी जो पत्नी है जैबुना बेगम, उन्होंने बताया कि कल रात से उनके यहाँ खाना नहीं बना है, लोग कुछ खा नहीं रहे हैं, ऐसे निराशा भरा माहौल है। और आइए सुनते हैं जो जैबुना है उनका क्या कहना था।
हम कोर्ट से हमारा न्याय मिलेगा, कोर्ट से हमारा न्याय मिलेगा, फिर भी हमारे कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो अब हम आगे चलेंगे और क्या करेंगे।
पहलू खान के बेटे हैं इरशाद खान और उन्होंने मुझे बताया कि वो पिछले 2.5 साल से इस केस के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी जो जीविका का साधन था काम धाम, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले 2.5 साल से कैसे उनकी पर्सनालिटी बदल गई है, वो कम बात कर रहे थे। मैं जब उनसे बात भी कर रहा था वो लगातार फोन देख रहे थे, मतलब एक स्पॉन्टेनिटी होती है वो नहीं थी, गुस्सा भी था उनके चेहरे पर और एक जैसे निराशा, इतनी घोर निराशा थी कि मैंने इतना संघर्ष किया। और ये उनका कहना था कि इतने स्ट्रांग सबूत थे, एक वीडियो जो वायरल हो गया उसको अदालत ने नहीं माना एज एविडेंस, उसको लेकर बहुत घोर निराशा थी। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था।
कैसे कह सकते हैं कि जिस हम कोर्ट से ही हम न्याय की उम्मीद कर रहे थे और कोर्ट ने उन लोगों को बरी कर दिया, कोर्ट ने ये कह दिया कि ये वीडियो फर्जी है जो ये वायरल हुआ है। तो ये वीडियो कोई हमारा आदमियों ने थोड़ी बनाया था, वीडियो बनाने वाले वो थे, मारने वाले वो थे।
हमारी जो पहलू खान के परिवार के जो लॉयर हैं कासिम खान, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने बोला कि अभी फैसला उन्होंने ऑर्डर पढ़ रहे हैं और उन्होंने उनका कहना था कि वो अपील पर विचार करेंगे, इसे हायर कोर्ट में कैसे ले जाया जाए।
विनीत, हमें बताएं कि आपकी बात हो गई पहलू खान के परिवार वालों से, बात हुई उनके वकील से, बात हुई उधर अभियुक्त पक्ष के वकील से, आपकी कोई बात हुई है, उनका क्या कहना है।
जो डिफेंस लॉयर है हुकुम चंद शर्मा, उन्होंने इसे हिस्टोरिक फैसला बताया और उन्होंने बताया कि जो अभियुक्त थे, जो 6 अभियुक्त थे, 6 लोग थे जिन्हें अदालत ने बरी कर दिया है, वो अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो पिकनिक के लिए बाहर गए। आइए सुनते हैं हुकुम चंद शर्मा का क्या कहना था।
हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा फैसला है, इससे न्यायपालिका की गरिमा बढ़ी है, लोगों का न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है कि इस तरह से निर्दोष लोगों को पुलिस ने झूठा केस में फंसाया और न्यायालय ने इनको निर्दोष साबित कर दिया और इनको बरी कर दिया।
जो पहलू खान के जो वकील हैं उनका क्या, उन्होंने ये जो फैसला आया है उसके लिए उनके शब्दों में पुलिस की जो शॉडी इन्वेस्टिगेशन है उसको उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। हमने जो पुलिस अधिकारी जो इससे इन्वॉल्व रहे उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन किसी से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है।
ये थे नू से बीबीसी संवाददाता विनीत खरे। और अब समय है आपके पत्रों के बारे में जानने का, आपकी राय में।
आपकी राय
नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और मेरे साथ हैं सूर्यांशी पांडे।
नमस्कार।
सूर्यांशी जी के पास जो आज ईमेल है उसमें श्रोताओं की राय है, सुझाव है और साथ में आलोचना भी है, कुछ तारीफ भी है।
बिल्कुल, आजाद भारत के आजाद राय। और आपकी राय में सबसे पहला खत हम लेते हैं। ये कहते हैं कि मेरा नाम भुट्टा खान बलोच है, गांव बिंजासर, जिला बाड़मेर, राजस्थान से लिखते हैं, और कह रहे हैं कि मेरा सुझाव है कि आगे बलूचिस्तान पर विशेष रिपोर्ट की जाए ताकि वहां पर क्या हो रहा है हमें भी पता चले, और हम खुद बलोच समाज से हैं तो हम चाहते हैं कि इस पर एक अच्छी कवरेज की जाए बीबीसी के द्वारा।
बहुत अच्छा सुझाव है आपका, और भुट्टा खान साहब आपकी चिट्ठी मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, आप बलोच समाज से हैं ये मुझे अब पता चला है। बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में अगर कुछ होता है, और बीबीसी उर्दू सेवा तो वहाँ है ही है, कुछ बड़ी खबर होती है तो हम उसको कवर करते हैं, अगर कुछ ऐसा होगा तो हम भूलेंगे नहीं आपके सुझाव को।
अगली चिट्ठी है देवेंद्र यादव की, जो राजस्थान के अलवर जिले से लिखते हैं, और ये कह रहे हैं कि आपके और सरकार के बीच में मतभेद हो सकते हैं लेकिन आपको सोचना होगा कि मोदी सरकार जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, तो मोदी सरकार जनता के संदेश को कैसे नकार सकती है ये आप और हम भलीभांति जानते हैं।
हाँ, इसमें कोई शक ही नहीं है, जनता ने नरेंद्र मोदी सरकार को चुना है, और जहाँ तक मतभेद की बात है तो बीबीसी का तो किसी से मतभेद भी नहीं है, न विचारों का समर्थन है न विचारों का विरोध है। हमारा काम समर्थन या विरोध करना नहीं है, हमारा काम जो समाज में हो रहा है उसको ईमानदारी के साथ और अपने श्रोताओं के प्रति निष्ठा के साथ प्रस्तुत कर देना, यही हमारा काम है।
जय किशोर प्रसाद लिखते हैं जिला सिवान से, बिहार से, और ये कह रहे हैं कि मैं बीबीसी को 1984 से सुनता आ रहा हूं और इस बीच में कोई शिकायत नहीं रही, परंतु आज मुझे जब ये पता चला कि अगले शुक्रवार से आपका कार्यक्रम एक घंटे का होने जा रहा है तब पत्र लिखने का मेरा मन बना और आज लिख रहा हूं। खुशी को शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता।
जी हाँ, इस तरह की और भी चिट्ठियाँ आई हैं कि हम शाम के कार्यक्रम यानी दिन भर का समय बढ़ाकर एक घंटा करने वाले हैं, और कल से यानी शुक्रवार से ये कार्यक्रम एक घंटे का प्रसारित होगा, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि कश्मीर की सच्ची तस्वीर मिले, भारत के दूसरे हिस्सों की सच्ची तस्वीर मिले। और कई बार हम बहुत आधे घंटे में एक तरह से हाथ पैर हमारे बंध जाते थे, तो अब हमारे पास भी मौका होगा और श्रोताओं आपके पास भी मौका होगा अपनी बात कहने का।
समय के बढ़ने पर तुषार यादव भटिंडा से लिखते हैं कि दिनभर कार्यक्रम की अवधि बढ़ाने के लिए शुक्रिया। और नेपाल से ये खत भेजा है गणेश प्रसाद हुजदार,
और इस बार भी इन्होंने ये नहीं बताया है कि नेपाल की किस जगह से, किस शहर, किस गाँव, किस कस्बे से रहने वाले हैं। हुजदार साहब, आप अगली खत में तो जरूर बताइएगा कि आप कहाँ हैं।
कह रहे हैं कि तनाव के माहौल में भी राजेश जोशी, जुबैर अहमद तथा अन्य संवाददाता से जम्मू कश्मीर का ताजा तरीन हाल जानने को मिला।
नहीं, मैं तो खैर वहां कश्मीर गया नहीं, लेकिन हाँ हमारे संवाददाता गण जो हैं वहां पर हैं, वहां से खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि तस्वीर वहां की जो है वो आप तक पहुंचे, इसी काम को ईमानदारी से करने की कोशिश है।
और सऊदी अरब से सादिक आजमी जब भी कलम उठाते हैं तो कुछ कविता तो जरूर, कुछ तुकबंदी जरूर होती है।
क्या लिखा है?
तो आज इन्होंने लिखा है कि बिन मांगे जो मिल जाए उस नजराने का क्या कहना, बीबीसी तेरी सोच तेरे जिम्मेदाराना,
फराइज का क्या कहना। फराइज यानी फर्ज जो है उनका प्लूरल है, फर्ज का बहुवचन है फराइज। तो सादिक आजमी साहब तो लगभग रोजाना हमें खत लिखते हैं, और इन्होंने भी समय बढ़ाए जाने की खुशी में चिट्ठी लिखी है, लेकिन हमारे पास इस वक्त समय बहुत कम है। एक और चिट्ठी आप पढ़ दें, उसके बाद हम विदा लेंगे।
ग्राम तरैया पोस्ट सांख वाया राजौरा, जिला बेगूसराय, बिहार से लिखते हैं जीशान नैयर।
जी हाँ, पुराने श्रोता है हमारे।
और ये कहते हैं कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद हर पल बदलती घटनाक्रम पर बीबीसी हिंदी की कवरेज अद्भुत है, बाकी अगर भारतीय मीडिया को देखें तो उसमें सिर्फ कश्मीर, जम्मू, लद्दाख और कारगिल में जश्न की तस्वीरें ही दिखाई जा रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसी निष्पक्षता से पत्रकारिता करते रहेंगे।
देखिए जीशान साहब, निष्पक्षता तो एक तरह से हमारा मूल भाव है, निष्पक्ष अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर पत्रकारिता करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो तो गारंटीड है, उसकी इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। अब इसी के साथ ही मैं अपने श्रोताओं से इजाज़त चाहता हूँ। चलते चलते पता बता दें, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
आपकी राय में आपके पत्रों के उत्तर दे रहे थे बीबीसी हिंदी रेडियो के संपादक राजेश जोशी और सूर्यांशी पांडे। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर संदीप राय से।
बीबीसी समाचार। भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं में तालमेल स्थापित करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए जाने की घोषणा की। ब्रिटेन में चीन के राजदूत लियू शाओमिंग ने कहा है कि अगर हांगकांग में हालात और बिगड़ते हैं तो बीजिंग हस्तक्षेप करेगा। एक रूसी एयरलाइंस में करीब 234 लोग इस समय बाल बाल बच गए जब उड़ान भरने के तुरंत बाद ही विमान को खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अंतिम पलों में अमेरिका की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद जब्त किए गए ईरानी तेल टैंकर की रिहाई अधर में लटक गई है। बीते अक्टूबर के बाद से अमरीकी शेयर बाजारों में एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट के बाद एशियाई बाजार भी औंधे मुंह गिर गए। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें इजाजत। नमस्कार।